તારીખ 2/9/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ગ્વાલિયરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 13 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
હમારે ભાવોં કા ક્યા ક્યા કૈસે કૈસા અનુભવ હોતા હૈ, અનુભવ કરના, વેદન કરના, યે આત્મા કા સ્વભાવ હૈ. दूसरी चीजों का तो अनुभव हम करते ही है, कर ही रहे हैं. अब जो सबसे नजदीक कोई अनुभव में आने वाली चीज है तो अपने भाव है, तो अपने भाव का हम अनुभव करें तो रागादि में आकुलता का अनुभव होगा, और ज्ञान में बिना आकुलता, आकुलता रहित पना जिसमें है, ऐसा निराकुलता का अनुभव होगा. यहां से जब अवलोकन चालू होगा, मैंने एक अनुभव क्या होता है उसकी जांच तलाश करने का एक अभ्यास चालू होता है. उस अभ्यास है वो भावों का परिचय रूप अभ्यास है. क्या है इसमें परिचय होता है कि क्या क्या हो रहा है. जब परिचय होता है तो परिचय से पहचान आती है, और उस पहचान आने में आत्म स्वभाव का वेदन से पहचान आती है. आत्म स्वभाव की जो पहचान है वो ज्ञान वेदन से आएगी. जब ज्ञान वेदन से पहचान आएगी तो आत्मा जिसकी महिमा अनंत है, और जितनी अनंत है उतनी महिमा आने लगेगी, उसमें आत्मरस पैदा होगा. ये आत्मरस बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे आत्मरस बढ़ता जाएगा, आत्मा स्वभाव से निर्विकल्प होने से इतना रस बढ़ेगा कि जो विकल्प है वो एक समय पर उत्पन्न होना बंद हो जाएगा. तो जो विकल्प का आकुलता रूप अनुभव चालू था वो बंद हो गया. उसी वक्त ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है उसका उभर के वेदन आता है, उसको हम स्वसंवेदन कहते हैं. वो उभर के वेदन आता है और उसके साथ शांति, आनंद आदि अनेक गुणों का परिणमन प्रकट होकर के अनुभव में आता है. तो ये जो वेदन है ये संवेदन है और स्वानुभूति है, वो एक ही चीज है. लेकिन बिना पहचान, कल रात्रि को जो चर्चा चली थी कि कुछ पर्यायें ऐसी हैं कि उसकी पूर्व पर्याय की शर्त होती है, उसमें हुए बिना वो आगे की चीज नहीं होती. जैसे सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता मुनि दशा में, ऐसे पहचान बिना अनुभव नहीं होता. तो ये पहचान की जो परिस्थिति है वो प्रैक्टिस का विषय बनता है. परिचय करने की एक प्रैक्टिस चालू होती है तो जो उसमें परिणमन है वो प्रैक्टिकली एजुकेट होता है. क्या जो हम पढ़ के अभ्यास करते हैं, सुन के अभ्यास करते हैं, अभी एक दूसरी किस्म का ये अभ्यास हो गया. ऐसा अभ्यास होने से ये अनुभव का मौका आता है, अवसर आता है. लेकिन एक लड्डू खाने में आपको आकुलता नहीं हुई तो दूसरा खा लो, दूसरा में आकुलता नहीं हुई तो तीसरा खा लो, तीसरा में आकुलता नहीं हुई तो 10 खा लो, 100 खा लो, कितना खाओगे? आकुलता होगी कि नहीं होगी? हाँ, अगर लड्डू खाने में आकुलता नहीं होती है तो कितने भी खाओ, आकुलता होनी ही नहीं चाहिए. हैं? मतलब आकुलता है वो शुरू में हमारी कल्पना दूसरी थी, इसलिए हमें आकुलता मालूम नहीं पड़ी, लेकिन थी तो सही वहां, नहीं थी ऐसी बात नहीं थी, आकुलता थी लेकिन मालूम नहीं पड़ी थी। जैसे 5 साल का बच्चा होता है वो अपने माँ के साथ या उसके भाई के साथ या पिता के साथ बाजार जाता है खरीद करने के लिए, मार्केटिंग करते हैं, और सब्जी लिया 2-3 किलो वजन हुआ, बोले मैं उठाऊंगा, बोले कि तू कैसे उठाएगा, तू थक जाएगा, तो कह नहीं मैं नहीं थकने वाला, लेकिन वो 3 किलो वजन 5 साल का बच्चा थोड़ी देर उठाएगा फिर कहेगा कि आप ले लो। क्यों? कि पहले उन्होंने ऐसा ऐसा हौसला बढ़ाया कि नहीं मुझे मुझे थक वजन नहीं लगेगा, तुमको वजन उठाना नहीं होगा, तो कहा नहीं 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 मैं उठा सकता हूँ, थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा, फिर 10-15 मिनट के बाद वो छोड़ देगा, नहीं आप उठाओ। ऐसा शुरू में क्या होता है, नहीं ये ठीक लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है तो फिर क्यों आकुलता होती है, क्यों छोड़ देते हैं। तो ऐसी कल्पना वश हम ठीक मान लेते हैं, अठीक मान लेते हैं, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान इसको कहते हैं कि जैसा पदार्थ है, जैसी जो चीज है, वैसा ही उसका ज्ञान होवे, वही सच्चा ज्ञान है। तो एक ऐसा अभ्यास चालू कर देना चाहिए कि जैसा पदार्थ है ऐसा ही हमको जानना है, हमें कोई अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करनी है, ऐसा एक अभ्यास चालू रखना चाहिए। अपने क्रमबद्ध में शांति आने का जो न्याय है, तो उसमें क्या है कि जो भी पर्याय हैं पदार्थों की वो अपने क्रम में होती है, तो उसमें एक तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार का जो असमाधान है वो मिटता है, इसका विज्ञान को अच्छी तरह स्वीकार करने से। लेकिन इस विषय को स्थापित करते हुए गुरुदेव ने एक दूसरी बात ये कही थी जो मूल की बात है कि आत्मा है वो ज्ञायक स्वभावी है, ऐसा लक्ष्य में रखकर सभी पर्यायों अपने क्रम में होती है, ऐसा जानकर उसकी उपेक्षा हो जाना और ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा हो जाना, यही इस विषय का सही न्याय है। और इस प्रकार के परिणमन से कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, और बिना ज्ञायक के लक्ष्य से अकेले पर्याय की क्रमबद्धता जो स्वीकार करने को जाते हैं वो उसके पूरे रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। जहां भी उनकी दृष्टि पर्याय पर पड़ी है, उसका लक्ष्य पर्याय पर है, तो जहां भी उसको जरूरत लगती है वहां वो फेरफार करने के लिए प्रयत्न करने लगता है, उस वक्त वो बात वो छोड़ देता है, इस सिद्धांत को छोड़ देता है, पर छोड़ देगा ही, वो पकड़ कर नहीं रख सकता। इसलिए उस विषय में मजबूत रहने के लिए भी आत्मा मैंने मैं ज्ञायक स्वभावी हूं ये बात मूल में पकड़ के रखनी है। उसकी मुख्यता में पर्याय की क्रमबद्धता सहज स्वभाव रूप महसूस होगी और कहीं भी अशांति नहीं होगी। ऐसे उसमें दो तरह के न्याय सम्मिलित है। पर्यायार्थिक न्याय के न्याय में सभी पर्यायों की क्रमबद्धता का न्याय है और मैं ज्ञायक स्वभावी हूं उसमें द्रव्यार्थिक न्याय का न्याय है। दोनों प्रकार के न्याय जो है वो समझ में तो एक साथ रह सकते हैं लेकिन उपयोग में उसका क्रम पड़ता है, क्योंकि दो है इसलिए। तो इस विषय में इस प्रकार से लेना ठीक रहेगा कि जीव के परिणाम कभी मंद कषायुक्त रहते हैं, कभी तीव्र कषायुक्त भी हो जाते हैं। एक शरीर के परिणाम किसी के भी रहने वाले नहीं है जब यही अनिवार्य परिस्थिति है, तब कषाय की तीव्रता के काल में पर्यायार्थिक न्याय को ग्रहण करके कषाय की मंद की स्थिति में आ जाना चाहिए, और जब कषाय मंद वाली स्थिति हो तब द्रव्यार्थिक न्याय से अपने स्वरूप को ग्रहण करने का एक पुरुषार्थ प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रयास तीव्र कषाय की परिस्थिति में बन ही नहीं सकता। तो जैसे ये डॉक्टर लोग वैद्य लोग जो काम करते हैं उसी तरह का ये काम हो गया कि जब कोई किसी को बुखार 105 डिग्री हो जाता है तो उसको पहले तो उसका जो टेम्परेचर है उसको डाउन करना पड़ता है। टेम्परेचर को डाउन नहीं करेगा तो दूसरा इलाज कोई काम में आने वाला नहीं इस वक्त, और टेम्परेचर ऐसे बढ़ता जाएगा एक दो डिग्री और बढ़ेगा तो आदमी खत्म हो जाता है। फिर जब 102 101 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो फिर जो है वो तो दूसरा इलाज करते हैं। अब उसको बुखार तेज बुखार को एकदम नीचे लाने में कभी थोड़ा नुकसान भी होता है, ऐसी भी दवाई देनी पड़ती है। तो इतना नुकसान थोड़ा सहन करके भी उस वक्त जो जरूरी है कि उसका बुखार का जो टेम्परेचर है वो नीचे आना जरूरी है, वरना उसका जो रिस्क है जोखिम है वो बढ़ जाता है। तो जैसे इलाज शरीर के इलाज करने में भी ऐसे तरीके हैं, वैसे हमारे अध्यात्म में भी अनेक प्रकार के जो न्याय हैं उस न्याय को इस्तेमाल कैसे करना इसके भी तरीके हैं। उस तरीके के जो जानकार हैं उस लोग उसमें जो अच्छी तरह वो अच्छी तरह समझते हैं कि कब क्या न्याय का कैसा प्रयोग करना, कब किस न्याय का कैसा प्रयोग करना, ये बात जो इस विषय के जानकारी जिसको होती है वो अच्छी तरह समझता है। अपना दूसरा तो काम करता ही है, निकम्मा तो कभी रहता नहीं, बिना परिणाम परिणाम बिना का तो रहने वाला नहीं है। तो जब ये अपना सही काम नहीं करता है तो दूसरा काम में लगा रहेगा, जहां इसको आवश्यकता लगी है वही काम करेगा। जीव कौन सा काम पहला करता है? जिसकी आवश्यकता लगती है। एक दुकानदार पर उसके काउंटर पर 10 ग्राहक आ जाते हैं एक साथ, भीड़ जमती है, वो किसके साथ बात करेगा? 10ों के साथ तो बात कर ही नहीं सकता, क्रम से किसी एक एक के साथ बात की जाती है, किसके साथ बात करेगा? हाँ? जो लेने वाला दिखे, जो ज्यादा माल लेने वाला दिखे उससे बात करेगा। तो ये तो जीव का स्वभाव है, जहां भी उसको लाभ होता है उसको वो प्रायोरिटी देता है, उसको अग्रता क्रम में रखता है। बहुत स्वाभाविक है ये बात। आत्मा पर को जानता है, ये बात आत्मा के स्वपर प्रकाशक स्वभाव से प्रसिद्ध है। क्या? आत्मा का जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, इससे आत्मा का पर प्रकाशन नहीं हो, ये बात ही मानने लायक तो नहीं है। हाँ, उतनी बात अवश्य है कि आत्मा पर का वेदक नहीं है, पर को भोग सकता नहीं है, पर का अनुभव कर सकता नहीं है। वेदन करना, अनुभव करना और भोगना, ये तीनों एक अर्थ है। तो ऐसा कोई स्वभाव नहीं है आत्मा में, लेकिन पर को जाने नहीं तो भेद ज्ञान किससे करेगा? जो भेद ज्ञान से संवर होता है, जो भेद ज्ञान से धर्म होता है, स्वानुभव होता है, वो तो बिना भेद ज्ञान तो किसी को स्वानुभव होने वाला ही नहीं। अगर पर को नहीं जाने तो पर से भिन्न हो, ये बात आएगी कहां से? पर को स्वय रूप में जानना, यही अज्ञान है, यही मिथ्यात्व है। लेकिन पर को पर रूप में जानना, ये तो सही ज्ञान है, ये तो सम्यक ज्ञान का विषय ही ऐसा होता है। इसलिए पर को नहीं जानता है, ये बात नहीं है। फिर भी ऐसे शास्त्र वचन आ सकते हैं कि आत्मा पर को नहीं जानता, ऐसा भी शास्त्र वचन हो सकता है जी। हाँ, मैंने तो नहीं सुनी, आपने सुनी होगी, लेकिन चर्चा तो अवश्य ये कोई हमारे समाज में अच्छे पैमाने में चल रही है इस बात की, तो इसलिए मैंने इस विषय का स्पष्टीकरण दिया कि आत्मा पर को नहीं जानता है। वहां अभिप्राय ये है कि पर को वेदता नहीं है। ज्ञान में जानना और वेदन करना दो ही धर्म है, लेकिन दो धर्म एक शरीर का काम नहीं करता। जानने का काम स्व पर दोनों को होता है, लेकिन वेदन करने का नहीं होता। तो ये अभिप्राय है वहां। अच्छा, फिर भी शास्त्र वचन ऐसा आता है कि जानता नहीं है, तो उसमें क्या कहना है? कि उसमें ऐसा कहना है कि जब ज्ञान निज में निज को जानता है, तब वो उसको निज का ज्ञान होता है। अस्थि रूप में उसको निज का ज्ञान होता है। क्यों? कि वहां पर की अस्थि नहीं है। निज में पर की अस्थि नहीं होने से निज में निज को जानने के काल में निज ही जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो अस्थि रूप से है, नास्ति रूप से तो वहां भी पर का ज्ञान होता है, होता ही है। कैसे? कि अगर स्वानुभूति में, शुद्धोपयोग में एकिला आत्म स्वभाव का अनुभव हुआ और ज्ञान भी हुआ, फिर वो निर्विकल्प स्वानुभव से सविकल्प दशा में बाहर आया कोई जीव, उसको पूछते हैं हम कि आपको आत्मा का अनुभव हुआ? कि हाँ, आत्मा का अनुभव हुआ। आत्मा सिवाय दूसरे का अनुभव नहीं हुआ? कि नहीं, दूसरे का अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि हमारे आत्मा में दूसरा कोई पदार्थ था ही नहीं, अकेला आत्मा था, तो अकेला आत्मा का अनुभव हुआ, अकेला हुआ मतलब क्या कि दूसरा नहीं था ऐसा, दूसरा का नहीं था ऐसा ज्ञान आया, दूसरा का अभाव रूप ज्ञान, नास्ति रूप ज्ञान तो उसी वक्त भी आता है, अस्ति रूप ज्ञान नहीं आता है। लेकिन नास्ति रूप नहीं ज्ञान आवे, ज्ञान नहीं आवे तो अनादि से जो पर का एकत्व है वो चालू रह जाएगा, वहां वहां एकत्व टूटता है, इसलिए नास्ति रूप से पर का ज्ञान तो वहां आता ही है। और जितना स्व का अस्ति रूप ज्ञान महत्वपूर्ण है उतना ही पर का नास्ति रूप ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें हमारे जो मकान होते हैं, जमीन होते हैं, इनकी जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, दस्तावेज कहते हैं, क्या आप दस्तावेज ही कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, चतुर सीमा इसमें लिखते हैं कि ये जो चार सीमा के बीच में जो जमीन और मकान है वो हमारा है और किसी का नहीं है, ऐसा क्यों लिखते हैं? अगर हम ऐसा नहीं लिखते तो क्या हो जाता कि हमारे भाई हैं, हमारे कोई हिस्सेदार है, भागीदार है, या कोई हमारे कुटुंबी जन है, वो ये कहेंगे कि उसमें तो लिखा है कि तुम्हारा है लेकिन हमारा नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा है, इसलिए तुम्हारा भी है और हमारा भी है, ये बात आ जाएगी बीच में। तो साफ लिखा हो कि हमारा है और किसी का नहीं है और किसी का दर दावा इसमें चलने वाला नहीं है, ऐसा साफ लिखना पड़ता है। तो जितना हमारा है वो लिखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि दूसरे का ही वो नहीं है, ऐसी बात है। तो इसलिए जो अस्ति है वो नास्ति से अपेक्षित होती है, अस्ति है वो नास्ति से अपेक्षित होती है। और प्रश्न तो आपने निकाला ने, स्व है वो किससे अपेक्षित है, हैं? पर सापेक्ष स्व है, अगर आप पर है मेरे लिए तो मैं मेरे लिए स्व हूं, अगर आप पर नहीं है तो मुझे मेरे लिए स्व कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्व के कारण से पर है और पर के कारण से तो स्व है। तो आप ये कहेंगे कि स्व का ज्ञान होता है या पर का नहीं होता है, ये बात कहां तक टिकने वाली है? ऐसा एकांत नहीं है इसमें, ऐसा एकांत नहीं है। और सर्वज्ञता, हमारे वितराग परमेश्वर को हम सर्वज्ञ कहते हैं, तो सर्वज्ञ विशेषण ही खत्म हो गया उसमें उधर। अगर पर का ज्ञान होता ही नहीं है तो सर्वज्ञ विशेषण रहने वाला नहीं है, हाँ रहेगा क्या? और जो भी जीव के अलावा दूसरे छह पदार्थ हैं हमारे जीव के अलावा, उसकी मौजूदगी की मौजूदगी का पता किसको चलता है? वो भी है विश्व में, मैं अकेला नहीं हूं, एको हम बहुश्यामी चंदलाल जी, एको हम बहुश्यामी ऐसा कहते हैं, तो बहुश्यामी कहां से आया? जब मैं अकेला ही हूं तो बहुत आया कहां से? ये बात है। हाँ, पड़ी पड़ी है, प्रमेयत्व है, ज्ञेयत्व है, वो कहां जाएगा? दूसरे पदार्थ में जो ज्ञेयत्व है, अगर उसका ज्ञान नहीं होता तो वहां ज्ञेयत्व भी नहीं होता, और ज्ञेयत्व होता और ज्ञान नहीं होता, वो बात कैसे संभव है? प्रमेयत्व है तो प्रमाण से तो प्रमेयत्व है, बिना प्रमाण ज्ञान प्रमेयत्व कहां से होगा? को पर रूप में जानना, इससे कोई दोष नहीं आता। राग को राग रूप में जानना, इससे कोई दोष नहीं होता। और जो जानने की शक्ति है स्वपर प्रकाशक, वो निश्चय है। वहां एक आर्ग्यूमेंट है, आप नहीं दे रहे हैं, मैं दे दूं आपकी ओर से, कि पर को जानना वो व्यवहार कथन है। क्या? पर को जानना वो व्यवहार वचन है, है? और व्यवहार है सो झूठा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, इसलिए आत्मा पर को वास्तव में नहीं जानता। ये दलील है इसमें, है क्या? नहीं है, है? तो व्यवहार, हर व्यवहार ऐसे झूठे नहीं। क्या पर्याय भी त्रिकाली की अपेक्षा से पर है और व्यवहार का विषय है, लेकिन पर्याय है ही नहीं, ऐसा कौन कहेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? ध्रुव में पर्याय नहीं है वो बात जरूर है, लेकिन पर्याय पर्याय में नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं है, ये तो निश्चय है। ऐसे स्वपर प्रकाशक में पर प्रकाशक कहना सो व्यवहार है, लेकिन जानना सो व्यवहार नहीं है, वो निश्चय है, क्योंकि वो जीव का परिणाम है। शक्ति है वो निश्चय रूप होती है, शक्ति में व्यवहार लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो निश्चय स्वरूप है आत्मा का। इसको देखने के लिए आप जो है शास्त्र आधार चाहिए, तो चिद्विलास का जो एक प्रकरण है, ज्ञान नाम का प्रकरण है, ज्ञान का प्रकरण एक है, इसमें वो बात लिखा, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण का प्रकरण। नियम सार में लिया है, नियम सार 159, 160, 161 जो गाथाएं चली है, शुद्ध उपयोग अधिकार का प्रारंभ किया है, वहां वो बात लिया है। वहां तो तर्क उठाया है कि आत्मा पर को नहीं जानता है, स्व को ही जानता है, क्योंकि निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में कोई पर का ज्ञान होता नहीं, अकेला आत्मा का ज्ञान होता है। तो आचार्य महाराज ने उसके सामने कहा कि ना नहीं, वहां भी स्वपर प्रकाशक है। कैसे? कि ज्ञान ज्ञान को भी जानता है और ज्ञान आनंद को भी जानता है, और आनंद पर है वहां, लेकिन स्वपर प्रकाशक पणा को स्थापित किया, वहां उड़ाया नहीं है, वो स्थापित करने के लिए आर्ग्यूमेंट दिया है, वहां न्याय दिया। निर्विकल्प अवस्था में भी स्वपर प्रकाशक है, सविकल्प अवस्था में तो है ही है, उसमें तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है बिल्कुल। हम इसको तो जैसा है ऐसा जानेंगे, ये सोनेरी कलर है, ये केसरी कलर है, ये कत्थई कलर है, तो ये तीन भेद कहां से हुआ? अगर जानना नहीं होता तो ये तीन कलर है ऐसा कैसे पता चला? बिना ज्ञान पता चला क्या? कोई नहीं सकता। लेकिन पर का जानना जो है उसमें प्रकार बहुत है। पर सन्मुख होकर पर को जानना, पर में एकत्व रखकर पर को जानना, इसका निषेध है। पर को जानने का निषेध नहीं है, ये बात है। जो जो सर्वज्ञ वितराग है, निरवशेष अंतर्मुख होकर के शुक्ल ध्यान में 13वें गुण स्थान में, जिसके ज्ञान में लोका लोक झलकते हैं, तीन काल तीन लोग झलकते हैं, इससे तो सर्वज्ञ बोले जाते हैं, तो उसी वक्त क्या है वो जानना सही है, पर सन्मुख भी नहीं होता, पर में एकत्व भी नहीं होता और जानना होता है। तो पर पदार्थ का ज्ञान में प्रतिभास होना, प्रतिबिंब होना, उसका नाम पर को जाना, ऐसी भाषा होती है। लेकिन जानने जानने में तीन प्रकार हो गया, एकत्व रूप से जानना, एकत्व छोड़कर के भी साधक अवस्था में सर्वस्व पर सन्मुख होता है लेकिन एकत्व नहीं होता है ऐसा जानना, ये दोनों प्रकार का जो जानना है वो ज्ञान का विभाव है। निषेध होता है, स्वभाव का निषेध कभी नहीं होता, जानना का निषेध नहीं है। किस तरह से जानते हैं, वैभाविक प्रकार से जानते हैं तो उसका निषेध है, स्वाभाविक प्रकार से जानते हैं तो उसका निषेध नहीं है, ये बात है। इसमें मैंने बहुत सी बातें हैं इसमें। किस किस प्रकार के परोक्षपणा, प्रत्यक्षपणा, उपयोग, लब्ध, सब प्रकार के चर्चाएं हमने ज्ञान के विषय की जो भी करने लायक है वो कर ली है, उसमें वो भी चर्चा की है कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, ऐसा एक शास्त्र वचन है, ऐसा भी एक शास्त्र वचन है जिसकी जिसमें से कितने न्याय निकलते हैं, और स्वपर प्रकाशकपना इससे निषेध नहीं हुआ है, निषेध नहीं होता है, वो भी न्याय यहाँ से निकलता है, ये भी बात उसमें दिया है, चर्चा किया है इस प्रकरण में, जो गुजराती जानते हों ले जाते हीरालाल वसुमानी अनुशीलन करते हैं, और भी इसमें और 7 प्रकरण है, 8 प्रकरण की छोटी सी किताब है। नहीं, पर सन्मुख होता है, उपयोग तो उपयोग में ही होता है, लेकिन उसका रुख 2 प्रकार का होता है, उसका मुख 2 प्रकार का होता है, अंतर्मुख भी और बहिर्मुख भी 2 प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार की बातें आती हैं, क्योंकि बहिर्मुख होना ये उपयोग का विभाव है, स्वभाव नहीं है, इसलिए नहीं। अभी आया नहीं, आज ही आया, कल आया था, कल आया था, 4वें 5वें गुण स्थान में उपचार लिया है, क्योंकि राजमार्ग जो है वो मुनि दशा है। क्या मार्ग जिसको हम मार्ग कहते हैं, जिन मार्ग कहते हैं, वैसे तो जिन मार्ग है वो आत्मा के अरूपी, आत्मा के अरूपी परिणाम है। क्या अमूर्त तत्व का ये अमूर्त परिणाम है, फिर भी अगर आपको मूर्तिमंत जिन मार्ग देखना हो, देखना चाहते हो, तो मुनिराज का दर्शन कर लो, ये मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग है, इसकी प्रधानता उतनी है, मोक्ष मार्ग में मुनि दशा की बहुत बहुत प्रधानता है, और सम्यक दृष्टि को उसका सही परिज्ञान होने से उनको इस दशा की बहुत बहुत भावना रहती है। क्यों, क्या हर क्षण में वो डूब जाते हैं अपने स्वरूप में, ऐसी कोई बिना विकल्प बिना सोचे सहज रूप से क्षण क्षण में निर्विकल्प हो जाते हैं और अपने आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। इससे सम्यक दृष्टि को सदन निवासी फिर भी है आता है पद में, हाँ, फिर भी वो वनवासी की भावना करते हैं। बात, हाँ ऐसा करके आप तो ये बहुत उसकी महिमा करने के लिए कह देते हैं कि ये चौथे पांचवें स्थान में उपचार संभव मोक्ष मार्ग है, ऐसा कह देते हैं, महिमा करने का विषय ऐसे हैं। शास्त्र में बहुत प्रकार के कथन आते हैं, जैसे सम्यक दृष्टि को ये कहेंगे अमृतचंद्र आचार्य देव के सही मुक्त एवा, क्या ये तो मुक्त है, यहां मोक्ष मार्ग भी उपचार से कहा और यहां तो मुक्ति बोल दिया, क्या समझे? अच्छा, सम्यक दर्शन को अविरत सम्यक दृष्टि कहेंगे। तो सम्यक दृष्टि जिसको एक समय की पर्याय में अनंत गुण की यथा संभव शुद्धि प्रकट हुई है, अनंत गुण के सर्वगुणांश तो सम्यक है, ऐसा होने पर भी उसको विशेषण अवगुण वाचक क्यों, अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा विशेषण क्यों, सब विचार करने लायक चीज होती है। आप कम से कम कोई एक गुणवाचक विशेषण लगा देते तो हमको बुरा नहीं लगता, लेकिन सम्यक दृष्टि होने पर भी इसका विशेषण को अवगुणवाचक विशेषण क्यों लगाते हैं? और ये 14 गुण स्थान में अनादि अनंत ये नाम है इसका, गुण स्थान के नाम को भी नहीं बदलते। जो आगम में गुणस्थान के नाम है वो हमेशा हमेशा वही रहते हैं, कभी नहीं बदलते वो, जैसे पंच परमेष्टि मंत्र में नाम बदलते हैं क्या, कि नमो अरियंताणम के नमो महावीरम, ऐसा नहीं आएगा, अरियंताणम ही आएगा पंच परमेष्टि। तो यही कारण है कि सम्यक दृष्टि तीन प्रकार के होते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि भी होते हैं, देश विरत सम्यक दृष्टि भी होते हैं और सर्व विरत सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तीनों सम्यक दृष्टि है, किसी प्रकट कारण और अप्रकट कारण को पा करके अगर सम्यक दर्शन को पहचाना जाए तो बात खत्म हो जाती है, पहचानने वाले की उसका निबेड़ा हो जाता है, यही कहने का कारण है। अरे सर्वज्ञ को भी आप सर्वज्ञ के रूप में नहीं पहचान करके अगर सम्यक दृष्टि के रूप में पहचानोगे तो काम हो जाएगा, ये सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। तो यही टोडरमल जी ने, क्या जिसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है वही टोडरमल जी ने गोमत सार की सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की एक टीका लिखी है। गोमत सार की टीका प्रसिद्ध है, बहुत बड़ी करुणानुयोग का ग्रंथ है, आगम तो करुणानुयोग का है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के पहले जो करण लब्धि में जो जीव आता है उसको जीन कहा है, क्या बोला, उसको जीन कहा है। तो जीन कहते हुए संस्कृत में टीका लिखी है अपने, जीन कहते हुए उन्होंने प्रश्न उठाया है अपने आप, उनको तो प्रश्न उठाने की तो बहुत शैली है कि यहां इस जीव को जीन क्यों कहते हो आप, इसको जीन क्यों कहा जाए। तो उत्तर दिया है अपने आप, समाधान किया है इस प्रश्न का कि जीनत्व प्राप्त हुआ है इसलिए हम उसको जीन कहते हैं। क्या बोला? करण लब्धि के परिणाम में सम्यक दर्शन बाद में होने वाला है, लेकिन करण लब्धि के काल में आत्माभिमुख परिणाम हो करके जिसने सम्यक प्रकार से विषय कषाया विभाव पर विजय प्राप्त किया है उसको जिनत्व की प्राप्ति होने से उसको हम जीन कहते हैं। सब देखिए कैसी कैसी बातें हैं। वही मुखमर प्रकाशक वाले ही टोडरमल जी है वो। कब क्या कहां क्या क्या कहते हैं देखिए आप। तो ऐसी बातें हैं, वाद विवाद में जिसको उलझना है इसलिए कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अपनी आत्मा का कल्याण को दृष्टिकोण रख करके कोई समझना है तो सब बात सरलता से समझ में आ सकती है। हमको तो चारों करना चाहिए लेकिन मूल में आत्म श्रद्धान है उसमें तीनों गर्भित है। तीनों जो बात है वो स्वरूप श्रद्धान में गर्भित हुई जाती है। क्यों? कि सम्यक दृष्टि के लिए कोई बाह्य परिस्थिति नियम बद्ध नहीं है सिद्धांतिक तौर से, बाधा आती है उसको। कैसे? एक तिरियन से उसको सम्यक दर्शन होता है, वो देव गुरु शास्त्र का सिद्धांत कहां करने को जाता है बताइए, बाधा आ जाएगी ना? वो नव तत्व का सिद्धांत कहां करने को जाएगा, बाधा आ जाएगी। इसलिए वो बाह्य परिणाम है तो स्वरूप श्रद्धान रूप अंतरंग परिणाम में गर्भित है, वहां भी उनको सभी है ऐसा मानना पड़ता है। प्रवृत्ति नहीं है इसकी कोई, न आगम की प्रवृत्ति है न कोई देवगुरु शास्त्र के व्यावहारिक प्रवृत्ति है, फिर भी पंचम गुण स्थान तक जाता है। पंचम गुण स्थान तक जाता है कि जहां सर्वार्थ सिद्धि का देव नहीं जाता, एक अवतारी क्षायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी इससे ज्यादा गुणवान है वो, लेकिन नमस्कार मंत्र भी वो नहीं बोलता, न देव गुरु शास्त्र की कोई चर्या है उनको। तो इसलिए कोई बाह्य परिस्थिति उसके लिए नियम रूप नहीं होती, इसलिए तो उनका नाम ही अविरत दे दिया, ऐसा तो नाम दे दिया अविरत सम्यक दृष्टि। ऐसा है कि ये मनुष्य अपेक्षित बात है, जो जीव मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य में बहुत से दर्शन है बहुत से मत है, जैन दर्शन के अलावा भी एक मनुष्य गति ऐसी है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के अभिप्राय गृहित मिथ्यात्व के पाए जाते हैं। तो बात तो कुछ सीमा में मर्यादा में होनी चाहिए, इसलिए कि मनुष्य के लिए बात ठीक है। नार्क में कहां जाएगा देव गुरु शास्त्र लेने के लिए? जैसे पशु को योग नहीं है वैसे नारकी को योग नहीं है, सातवें नारकी में कहां देव गुरु शास्त्र की चर्या है, वहां कहां आगम है? फिर भी वहां सम्यक दर्शन होता है। तो ये बात जो है वो मनुष्य के लिए और हम मुमुक्षुओं के लिए मर्यादित है। मुमुक्षुओं को व्यवस्थित रूप से अगर पद्धति को ग्रहण नहीं करेंगे तो बहुत से अन्य मत है, विद्यमान है, प्रवर्तित है, कब ग्रहित मिथ्यात्व में कैसे चला जाएगा पता नहीं लगेगा उनको अपने आप, ये बात। पूरा प्रश्न हाँ, पूर्व संस्कार बिना नहीं हो सकता, और पूर्व संस्कार में भी ऐसा नियम है कि जीवंत नियम, जीवंत मूर्ति का उपदेश पाए बिना संस्कार नहीं मिलता, चाहे वो जीवन सजीवन मूर्ति सर्वज्ञ देव हो, चाहे कोई निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराज हो, चाहे कोई सत्पुरुष सम्यक दृष्टि हो, बिना इसके योग और उपदेश किसी को संस्कार मिलता नहीं, होता नहीं। जैसे ज्योत से ज्योत जलती है, वैसे ज्ञान से ज्ञान की निमित्त नैमित्तिक उत्पत्ति है, जड़ से कभी निमित्त नैमित्तिक उत्पत्ति नहीं होती। जैसे किसी को बिना गुरु शास्त्र से ज्ञान होता है लेकिन वो संस्कारित होता है तो, वरना नहीं। प्रतिमा जी से ज्ञान होता है लेकिन संस्कारित होता है तो, ऐसे नारकी को वेदना से ज्ञान होता है लेकिन संस्कारित होता है तो, पूर्व संस्कार नहीं होता तो ये ज्ञान संभव नहीं है। और ये पूर्व संस्कार बिना सजीवन मूर्ति कभी मिलता नहीं, कभी होता नहीं, ये एक वस्तु स्थिति है। इसमें रायचंद जी ने ये बात लिखी है कि पामे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि स्थित किसी को सम्यक ज्ञानी का प्रत्यक्ष योग उपदेश नहीं मिला हो और किसी को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, ऐसा तीन काल में बनने वाला नहीं। ये अनादि परिस्थिति, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये भी एक पारिणामिक भाव रूप से विश्व में है, ऐसी बात। उसका न्याय बहुत सूक्ष्म है, उसका न्याय बहुत सूक्ष्म है, लेकिन है सो है, उसमें कोई अंतर नहीं। व्यक्त करने में उतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ में ज्ञान गर्भित है, लेकिन एक ज्ञान सामान्य है और एक ज्ञान विशेष है, ऐसे दो शक्तियां। ये प्रश्न हमने पूछा था गुरुदेव को, दो है, ऐसे सर्वदर्शी भी शक्ति है और दृष्टि शक्ति भी है। नहीं, शक्तियां अलग अलग है, एक शक्ति को, सभी शक्ति को, प्रत्येक शक्ति को अनंत गुण का रूप है, ज्ञान शक्ति को भी है और सर्व शक्ति को भी है। लेकिन जैसे ज्ञान शक्ति है वैसे सर्वज्ञ शक्ति अलग है, वैसे दृष्टि शक्ति है और सर्वदर्शी शक्ति भी अलग है, दो अलग अलग है। ऐसे ही के आत्मा में ज्ञान है और निर्मलता होने से उसमें प्रतिबिंब आता है पर पदार्थ का, जिसको हम पर को जानना कहते हैं, लेकिन स्वच्छत्व शक्ति अलग है और स्वसंवेदन के लिए प्रकाश शक्ति अलग है। लेकिन एक ज्ञान में सभी पाया जाएगा, लेकिन शक्तियां सब अलग अलग, ऐसा बहुत सूक्ष्म विषय है। Thank you. नित्य अनित्यात्मक है प्रमाण से, और जो मूल वस्तु है, मूल तत्व है आत्मा का, वो तो अनुभव स्वरूप है, न नित्य है न अनित्य, अनुभव स्वरूप है। और प्रमाण से कहे तो उभयात्मक है, उभयात्मक भी है पर अनुभव भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, सभी प्रकार से उसका जो विवरण है, विवीक्षा है, वो मिलती है। प्रमाण की विवीक्षा में उभयात्मक है, नित्य अनित्यात्मक है, भेद अभेदात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है। और व्यवहार से कहे तो अनित्य है, व्यवहार से कहे तो अनित्य है, निश्चय से कहे तो नित्य भी है, और निश्चय से व्यवहार से भी नित्य है। हम आगे जाके रखें, व्यवहार से अनित्य है, निश्चय से नित्य है, और व्यवहार से नित्य है, निश्चय से अनुभव स्वरूप है, न नित्य है न अनित्य है, ऐसी बात। क्यों कि अकेली नित्य होती तो उपयोगो लक्षणम में पाया नहीं जाता, स्वभाव स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, उपयोग में स्वभाव प्रकाशित नहीं होता तो किसी को पहचान नहीं होती। अगर उपयोगात्मक अनित्य होती तो ध्रुव में नहीं मिलता, वो निकाली में नहीं मिलता। इसलिए न केवल नित्य रूप है न केवल अनित्य रूप है, इसलिए अनुभव स्वरूप है, ऐसी बात की बात लिया है। पंचाध्यायी आप देख लेना, उत्तरार्ध में 761-63 गाथा, उसमें वो बात लिया है पंचाध्यायी का उत्तरार्ध। क्षण की चर्चा समय सार के परिशिष्ट में चली, हाँ, तो लक्ष्य है वो तो शुद्धात्मा है अपना स्वभाव, और इसका लक्षण है वो ज्ञानोपयोग है। तो ज्ञान में लक्ष्य और लक्षण का विभाग क्यों किया, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध को प्रसिद्ध करने के हेतु से कहा, जो प्रसिद्ध उपयोग है इससे स्वभाव को प्रसिद्ध करने के हेतु से कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस उपयोग में स्वभाव प्रकाशित था, उपयोग तो अनित्य है और आत्मा का स्वभाव तो नित्य है। अगर केवल नित्य होता तो उपयोग में वो देखा नहीं जाता, पाया नहीं जाता, और केवल अनित्य होता तो उसका स्वरूप त्रिकाली रहता नहीं, क्षण में विनाश हो जाता। तो इसलिए न केवल वो नित्य है न केवल अनित्य है, इसलिए अनुभव स्वरूप है, उसी को ही सामान्य कहते हैं। तो उभयात्मक कहने से उसकी विशेषता हो जाती है, इसलिए उस वहां पंचाधिकार ने नित्य को व्यवहार में डाला है। अनित्य अंश को तो व्यवहार का है ही, लेकिन नित्य अंश को वहां व्यवहार बताया है, उसी कारण को बताया है, यही कारण है उसको, वरना नित्य को कौन व्यवहार कहे। और समय सार में वो बात 26 कलश में लिया है, जो 143 गाथा के पास में है, जो 26 कलश, उसमें मैं एक भी नहीं, मैं अनेक भी नहीं, मैं शुद्ध भी नहीं, मैं अशुद्ध भी नहीं, मैं भेद रूप भी नहीं, मैं अभेद रूप भी नहीं, मैं नित्य भी नहीं, मैं अनित्य भी नहीं, सब आया कि नहीं आया कलश समय सार में, वो बात आई है। 26 कलश लिए है चंद्र आचार्य देव ने, इसी मुद्दे पर लिए है, खलु चिच्चि देव ऐसा करके 26 में ये लगा, मैं तो खलु चिच्चि देव, मैं तो चित स्वरूप ही हूं, न भेद रूप हूं न अभेद रूप हूं, न नित्य रूप हूं न अनित्य रूप हूं, सब भेद लिया है। वस्तु तो निर्विकल्प है, तो वस्तु निर्विकल्प है उसमें अभेद का भेद भी सुहाता तो नहीं। वस्तु तो निर्विकल्प है, जो सामान्य है, जो निर्भेद है और जो अनुभय स्वरूप है, उसी के आश्रय से ही पर्याय भी वैसी तद्रूप होने से पर्याय निर्विकल्प होती है। तो निर्विकल्प होने के लिए कहो या निर्विकल्प वस्तु का आश्रय करने के लिए कहो, दोनों एक ही बात है, अवलंबन का तो वहां अभिप्राय है, क्योंकि वहां तो अवलंबन कराना है। 143 144 में क्या कराना है, अवलंबन तो कराना है पक्षांतिक्रांत होकर के। अमृत चंद्राचार्य 143 की टीका में पक्षांतिक्रांत होने वाले सम्यक दृष्टि को परमात्मा कहते हैं, आगम उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहता है, और वही आगम के लिखने वाले आचार्य उसको परमात्मा भी कहते हैं। वहां परमात्मा शब्द का प्रयोग है, तो परात्मा हो गया, परमात्मा हो गया, समयसार हो गया, सब वैसा विशेषण ले लिया, तो परमात्मा लिया है। बहुत सी कथन विवेक्षाएं हैं, जहां महिमा कराना है तो बहुत ऊंचे दर्जे का महिमा कर दिया सम्य दृष्टि का। तो अविरत की भी चर्चा किया वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, कि फिर तो फिर सम्यक दृष्टि को अविरत क्यों कहते हो, करण लब्धि वाले को आपने जिन कहा और सम्यक दृष्टि जो आगे बढ़ा है करण लब्धि से उसको अविरत सम्यक दृष्टि क्यों कहते हो, क्योंकि तो हमें कोई सम्यक दृष्टि का अवगुण दिखाने का हमारा अभिप्राय नहीं है। क्या है, लेकिन हमारा यहाँ अभिप्राय ऐसे है कि जैसा देश विरत और सर्ववितर विरत सम्यक दृष्टि होता है वैसा ये नहीं है, उतना ही हमें दिखाना है। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ऐसा कहते हैं। तो बहुत चर्चा की, तो छानबीन के सब बात को कहते हैं। वो कहते हैं तो हित करने में तो क्या है, पहचान करने का है। ये ट्रक चलाते हैं ना, बड़े बड़े ट्रेलर चलाते हैं, क्या ट्रक क्या बड़े बड़े ट्रेलर चलाते हैं, क्या वो पढ़े लिखा इंजीनियर है क्या, उसको कोई काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिज्म समझ में आता है क्या? हाँ, पेट्रोल में से एनर्जी जो है वो गतिमान होती है, पहिए चलाता है। तो साइंस तो वो कहता है कि जो एनर्जी पेट्रोल में पड़ी है वो एनर्जी को ट्रांसफर करके हम काइनेटिक एनर्जी में रख देते हैं तो ये पहिया चलने लगता है। हम क्या, वो तो किराया लेता है तो अंगूठा डालता है, कैसे किराया लेता है, वाल्सर पर 2000 रुपया का किराया लेगा ड्राइवर, साइन करने को नहीं आता। तो जैसे ये इतना बड़ा व्हीकल है वो एक प्रैक्टिस से चला सकता है, क्या कौन सा ज्ञान है उसके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज है। जिसने काइनेटिक एनर्जी का किताब लिखा हो ने वो कार नहीं चलाना जानता हो शायद, और ये चलाने को जानता है, पढ़े लिखे पे तो कोई सवाल नहीं है। ये तो अनुभव ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। कितना भी पढ़ो, कितना भी सुनो, कितनी भी चर्चा करो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस ये अनुभव होने वाला नहीं। बहने रसोई बनाती है ना, महिलाएं रसोई बनाती है, तो क्या कोई पाकशास्त्र पढ़ती है क्या? कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? बहनों के स्कूल में पाकशास्त्र पढ़ाया जाता है क्या? हाँ, रोटी कैसे बनाना, सब्जी कैसे बनाना, मिठाई कैसे बनाना, नमकीन कैसे, इसका किताब पढ़ते हैं क्या? प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखती है घर में, और क्या है, कभी बिगड़ता है शुरू शुरू में, लेकिन बनाते बनाते बन जाती है सब चीज। क्या क्या उपाय नहीं, बस ये प्रैक्टिस करना, वही उपाय है। प्रैक्टिस क्या करना? हाँ, वो ठीक बात है। जो बात हम समझते हैं उसको हमारे उदय में लागू करना, हमारे परिणमन में लागू करना, उसी का नाम प्रैक्टिस है। क्या दृष्टांत देते हैं? कम ये समझे के राग दुख रूप है, क्या समझे? नास्तिक का विषय है ना स्थूल, राग है तो दुख रूप है। ये दुख कोई समझने की चीज है या वेदन करने की?